रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 बहुमत से हुई पारित। समानता और पारस्परिक हित के आधार पर संधि समझौते करने की नीति होने की बात पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा की केंद्रीय समिति को 151 सदस्यीय बनाने के लिए सचिवालय द्वारा विधान संशोधन। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए विज्ञापन बोर्ड का निर्देश। और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन का मास्को पर सबसे जोरदार हमला। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 पारित हो गया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने विनियोजन विधेयक को पारित करने प्रस्ताव किया था, जिसे सभा ने बहुमत से पारित किया। वहीं कुछ सांसदों द्वारा रखे गए विनियोजन शीर्षक पर खर्च कटौती के प्रस्ताव को सभा के बहुमत ने अस्वीकृत कर दिया। इससे पूर्व अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा कि पद और शक्ति के दुरूपयोग से अवैध संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति रोकने के उद्देश्य से स्थायी संपत्ति जांचबूझ आयोग 2083 का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग केवल जांच कर सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करेगा और इससे संवैधानिक निकायों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने भ्रष्टाचार के विरूद्व शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय परिचय पत्र को सभी सार्वजनिक सेवाओं से जोड़ने तथा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए 50 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यक्रम की जानकारी दी। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने शिक्षा और खेल क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिकतम बजट आवंटित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, शिक्षक क्षमता विकास और विद्यालय से बाहर रहे बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहने की बात कही। कानून मंत्री सोभिता गौतम ने संक्रमणकालीन न्याय आयोग का गठन प्रक्रिया आगे बढ़ने और निशुल्क कानूनी सहायता को प्रभावकारी बनाने के लिए एकीकृत कानूनी सहायता विधेयक तैयार किए जाने की जानकारी दी। विज्ञान तथा नवप्रवर्तन विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने नवाचार और अनुसंधान को आर्थिक उत्पादन से जोड़कर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने बहुवर्षीय बजट प्रणाली को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी देते हुए सड़क सुरक्षा, दो लेन सड़कों के विस्तार, काठमांडू को धूलमुक्त बनाने और स्वच्छ पेयजल पहुंच बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि प्रसारण लाइन और सब स्टेशन निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा अगले आर्थिक वर्ष में 12 रणनीतिक महत्व की प्रसारण लाइनें निर्माणाधीन रहेगी। वहीं परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने समानता और पारस्परिक हित के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाने, सगरमाथा संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित करने तथा प्रवासी नेपालियों की पूंजी, श्रम और कौशल के उपयोग के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सचिवालय बैठक ने पार्टी के विधान में संशोधन कर केंद्रीय समिति का आकार 151 सदस्यीय बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी सचिवालय बैठक का निर्णय आज सार्वजनिक करते हुए महामंत्री कविन्द्र बुर्लाकोटी ने बताया कि केंद्रीय समिति 151 सदस्यीय बनाने और प्रदेश समिति के संपत्तियों को पदेन सदस्य के रूप में रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बैठक में महाधिवेशन से पहले आवश्यकता से अधिक प्रचार प्रसार होने की बात सामने आने पर संयम रखने और पार्टी के चुनाव आचार संहिता व अनुसंधान के भीतर रहकर गतिविधि संचालन करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह बैठक में सातों प्रदेशों के अधिवेशन की समीक्षा की गई। ये जानकारी महामंत्री बुर्लाकोटी ने दी। रासपा महाधिवेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराने की तैयारी कर रही रही है। महामंत्री ने बताया कि महाधिवेशन में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी आसार 7 से 9 गते तक चितवन में होने वाले महाधिवेशन में लगभग 3,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। विज्ञापन बोर्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से आधारहीन और भ्रामक विज्ञापन प्रसारित और प्रकाशित करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बोर्ड ने आज सूचना जारी करते हुए कहा कि कानून द्वारा निषिद्ध आवश्यक लेविंग, बोर्डिंग और आधिकारिक प्रमाणीकरण के बिना औषधीय पदार्थों और वस्तुओं के विज्ञापन सोशल मीडिया में बढ़ रहे हैं, जिन्हें तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया। सूचना में कहा गया है कि विज्ञापन एन और अन्य प्रचलित कानूनों के विपरीत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। विशेष रूप से कपाल उगाने, कपाल लंबा या घना बनाने, हड्डी और नसों के दर्द ठीक करने, शरीर की चर्बी घटाने, किडनी साफ करने और शरीर से विषैले पदार्थ निकालने जैसे दवाओं वाले उत्पादों का प्रचार व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ने सूचना प्रवाह प्रणाली को प्रविधि मैत्री बनाते हुए एकीकृत आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबन्ध प्राधिकरण में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि मानसून जन्य आपदा पूर्व तैयारी, राजमार्ग की स्थिति, हेल्पलाइन सेवा और आपात प्रतिक्रिया योजना में संबंधित मंत्रालयों और सुरक्षा निकायों के बीच समन्वय और सूचना प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने आपदा पूर्व तैयारी में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और नागरिक सेवा तथा बचाव व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए सुरक्षा निकायों के प्रमुखों को निर्देश भी दिए। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने चीनी कंपनी हुवावे के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष टेरी हे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। मंत्रालय में हुई बैठक में अध्यक्ष टेरी हे ने कहा कि नेपाल डिजिटल परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण में है और इसके लिए हुवावे के पास आवश्यक तकनीक, अनुभव और संसाधन है, इसलिए सहयोग किया जा सकता है। इस पर मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि नेपाल ने सभी व्यावसायिक गतिविधियां पारदर्शी, स्वच्छ और उत्तरदायी होनी चाहिए तथा बिचौलिया प्रणाली को स्थान न दिया जाए और नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर काम किया जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मास्को क्षेत्र पर किया गया हमला किएव पर किए गए रूसी हमले का जवाब था। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए खास तौर पर किएव पेचेसर्क लावड़ा का जिक्र किया, जिस हमले में आग लग गई थी। उस हमले में कीव के 5 लोग की मौत हुई थी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह जून के हमलों को जवाब देगा और चुपचाप नहीं बैठेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूक्रेन जलेगा तो आपका मास्को भी जलेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने टेलीग्राम संदेश को दोहराते हुए रूस से युद्ध समाप्त करने की अपील भी की। हालांकि उनके अनुसार रूस के राष्ट्रपति ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं दिखा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने पश्चिमी देशों से रूस पर प्रतिबंधों का दबाव और बढ़ाने का आग्रह किया। यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार है जब मास्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से विनियोजन विधेयक 2083 बहुमत से हुई पारित। समानता और पारस्परिक हित के आधार पर संधि समझौते करने की नीति होने की बात पर राष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा की केंद्रीय समिति को 151 सदस्यीय बनाने के लिए सचिवालय द्वारा विधान संशोधन। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित न करने के लिए विज्ञापन बोर्ड का निर्देश। और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन का मास्को पर सबसे जोरदार हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।